हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अगली सुबह कृषा युग की बाहों में बेफिक्री से सो रही थी। दोनों ही गहरी नींद में सोए हुए थे। कृषा और युग के कपड़े फ्लोर पर बिखरे हुए थे और उन्हें ये तक एहसास नहीं था कि अब उन दोनों के बीच एक बच्चा आ चुका है। सुबह के लगभग 8 बजे के करीब युग के कमरे का दरवाज़ा किसी ने जोर से खटखटाया। वो ध्रुव था जो दरवाज़ा खटखटाते हुए चिल्लाकर बोल रहा था, क्रिश, डैड, आप अब तक उठे क्यों नहीं हो? मुझे स्कूल के लिए रेडी कौन करेगा? प्लीज़ ओपन द डोर। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर कृषा और युग की नींद टूटी। उन्हें बाहर ध्रुव की आवाज़ सुनाई दी तो कृषा जल्दी से उठने लगी। तभी युग ने उसे फिर से अपने करीब खींचकर कहा, खुद पर ज़रा ध्यान दो, अब क्या इसी हालत में दरवाज़ा खोलने जाओगी? युग के कहने पर कृषा ने ध्यान दिया कि उसने कुछ नहीं पहन रखा था। उसने जल्दी से खुद को ब्लैंकेट से कवर किया और युग की तरफ तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, अलार्म नहीं लगा सकते थे क्या तुम? पता नहीं मेरा बच्चा कब से बाहर अकेला आवाज़ें लगा रहा होगा। उसकी बात सुनकर युग ने आईज रोल करके कहा, बच्चा सिर्फ तुम्हारा अकेले का नहीं है। सेकंड थिंग, यहाँ बैठकर ये सोचना कि बच्चा क्या सोच रहा होगा, उसके बजाय कपड़े उठाकर पहनो और दरवाज़ा खोलो। बोलते हुए युग बेड से उठा और उसने कृषा की तरफ कपड़े फेंके। युग ने जल्दी से कपड़े पहने। जब उसने देखा कि कृषा भी ड्रेसअप हो चुकी है, तब उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला। ध्रुव ने पहले युग के चेहरे की तरफ देखा, बाद में कृषा को। वो उतरे हुए चेहरे के साथ बोला, मुझे स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। कितनी बार कहा है मैंने आपसे कृष कि आप अलार्म लगाकर सोया करें? मुझे टीचर से डांट नहीं सुननी होती है। आज मैं तुम्हें छोड़कर आऊंगा और किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें डांटने की, युग ने जवाब दिया और ध्रुव को अपनी गोद में उठा लिया। कृषा जल्दी से बिस्तर से उठकर आई और उसने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, कोई जरूरत नहीं है आज स्कूल जाने की। कल तुम्हारा बर्थडे है और हमें उसके लिए शॉपिंग भी करनी है और साथ में प्रेपरेशन भी। अब ये मत कहना कि बर्थडे तो हर साल आता है, नथिंग स्पेशल। नो क्रिश, दिस टाइम एवरीथिंग इज रियली स्पेशल, ध्रुव ने युग की तरफ देखते हुए जवाब दिया। ध्रुव का जवाब सुनकर युग ने उसके गाल पर किस किया। युग से बातें करते हुए ध्रुव की नज़र कृषा की तरफ गई तो उसकी नेक पर लव बाइट का निशान बने हुए थे। ध्रुव ने आंखें छोटी करके कृषा की तरफ देखा और फिर धीरे से कहा, क्रिश, आपकी नेक को क्या हुआ है? हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए, ये किसी तरह की एलर्जी भी हो सकती है। ध्रुव कृषा की बिल्कुल युग की तरह ही केयर करता था। उसके कहने पर कृषा जल्दी से आईने के सामने गई तो वहां बने निशान को देखकर उसे एम्बैरेसमेंट फील हो रहा था। कृषा ने जल्दी से अपने बालों को गर्दन पर फैलाया और फिर ध्रुव के पास आकर कहा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, कई बार किसी स्किन प्रोडक्ट की वजह से ऐसा हो जाता है, मैं देख लूंगी खुद से ही। कृषा जिस तरह से ध्रुव के सामने बहाने बना रही थी, उसे देखकर युग के चेहरे पर ईविल स्माइल थी। उसने ध्रुव को गोद से उतरकर कहा, अच्छा आप अब फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक आता हूँ। और हाँ, क्रिश की एलर्जी की परवाह तुम मत करो, मैं उसे ऑइंटमेंट लगा दूंगा। ध्रुव वापस अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही युग ने कृषा को अपनी बाहों में खींचा और उसके गर्दन पर फिर से किस करने लग गया। कृषा ने उसे रोकते हुए कहा, क्या कर रहे हो युग? अभी अभी ध्रुव ने क्या कहा, सुनाई नहीं दिया क्या? वो यहीं पर है, वापस आ गया और हमें इस पोजीशन में देखेगा तो क्या सोचेगा? बच्चों के सामने ये सब नहीं करना चाहिए, उन पर गलत इफेक्ट पड़ता है। युग ने कृषा को किस करना छोड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें तो बहुत अच्छे से बहाने बनाने आते हैं, अभी अभी मैंने लाइव एग्जाम्पल देखा था। ऐसा करना उसे बोलना कि तुम्हारे डैड मेरी एलर्जी पर मेडिसिन लग रहे थे। हाँ तो क्या करती, कोई ना कोई बहाना तो बनाना ही था, तुमने तो ये सब करके छोड़ दिया, कृषा ने युग को खुद से अलग करके कहा और फिर बाथरूम में चली गई। कुछ भी देर में युग, कृषा और ध्रुव तीनों तैयार हो चुके थे और इस वक्त वो शॉपिंग के लिए जा रहे थे। उनके साथ में मीरा, मलिक और वीर भी थे जो अलग गाड़ी में थे। मलिक उनकी सिक्योरिटी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उनके साथ में काफी सारे गार्ड्स भी जा रहे थे जो अलग गाड़ियों में थे। सबसे आगे सिक्योरिटी गार्ड की गाड़ी चल रही थी, फिर मलिक मीरा की और उसके पीछे योग और कृषा की। उनकी गाड़ी के पीछे भी एक गार्ड से भरी हुई गाड़ी आ रही थी। जैसे ही वो चार गाड़ियां योग के विला से बाहर निकली, वहां दूर खड़े एक आदमी ने अपने ब्लूटूथ पर कहा, कल योग राणा के बेटे धर्म राणा का बर्थडे है, जरूर उसके लिए शॉपिंग करने के लिए सब गए होंगे। अक्सर चार ही गाड़ियां बाहर निकलती हैं। ये लोग अपने साथ पूरी सिक्योरिटी लेकर चलते हैं। जिस आदमी को युग के घर की निगरानी रखने के लिए छोड़ा गया था और वो अपना काम बखूबी कर रहा था, उसने उनके बाहर निकलने की हर एक जानकारी सामने वाले इंसान को कॉल पर दी। पूरी बात सुनने के बाद सामने से आवाज आई, ठीक है, मैं अपने आदमियों को उस तरफ भेज देता हूँ, वो अटैक के लिए तैयार रहेंगे। युग राणा के बाद उसका बेटा इस पोजीशन का दावेदार हो सकता है, पहले उसे ही मार देते हैं ताकि ना रहेगा बांस और ना ही बचेगी बांसुरी। ऐसा करो, तुम अपनी बाइक लेकर उनके पीछे जाओ और मुझे उनके हर एक मोमेंट की इन्फॉर्मेशन दो, बाकी मैं प्लान कर लूंगा। बाहर खड़े आदमी ने उसकी बात पर हामी भरी। वो अपने बाइक के साथ उनके पीछे जा रहा था, उसने हेलमेट लगा रखा था और उनसे एक निश्चित दूरी बनाकर चल रहा था। वो उनकी हर एक जानकारी कॉल पर किसी को दे रहा था। वो लोग मेन स्ट्रीट के शॉपिंग मॉल में पहुंचे हैं। लगता है उनका पहले से ही प्लान था, तभी मॉल को खाली करवा दिया गया है। बाहर क्लोज का साइन लगा हुआ है, बाइक वाले आदमी ने कॉल पर बताया। तब तो काम और भी आसान होगा, उन्हें जितनी शॉपिंग करनी है करने दो, जब वो नीचे की तरफ आए तब बस एक कॉल कर देना, हमारे आदमी अंदर मौजूद होंगे। मॉल के अंदर कैसे घुसना है ये वो अच्छे से जानते हैं, कहकर उस दूसरे आदमी ने कॉल कट कर दिया। वहीं युग और कृषा ध्रुव के साथ शॉपिंग करने में लगे थे। मलिक मीरा और वीर के साथ था, उनके पीछे पीछे गार्ड्स भी चल रहे थे। कितने टाइम बाद मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग करने के लिए आई हूँ, कृषा ने युग का हाथ पकड़कर कहा। वैसे जहां तक मुझे याद है पहले भी तुमने मुझे कुछ खास शॉपिंग नहीं करवाई थी, सब कुछ घर पर ही आता था। हाँ, ध्रुव के लिए मैंने हाँ कही है, वरना अभी भी सब कुछ घर पर ही आने वाला था, युग ने जवाब दिया। वो दोनों पास में खड़े थे जबकि ध्रुव उनसे कुछ दूर शॉपिंग ट्रॉली में सामान डाल रहा था। ध्रुव हर एक सामान को अच्छे से देखकर और सिलेक्ट करके डाल रहा था, जिसे देखकर युग ने कहा, अजीब कॉम्बिनेशन है ना हम दोनों का, कुछ हरकतें तुम्हारी तरह तो कुछ बिल्कुल मेरी तरह, पर हाँ ज्यादातर मेरी तरह ही है, देखना ये भी माफिया वर्ल्ड में मेरी तरह ही अपना अलग मुकाम हासिल करेगा। कृषा ने युग के इस बात का कोई जवाब नहीं दिया था। युग समझ गया था कि कृषा नहीं चाहती ध्रुव माफिया की दुनिया में आए। कृषा के चुप होने पर युग ने उसके हाथ को सहलाकर कहा, उसे डिसाइड करने देते हैं कि वो क्या करना चाहता है, बाकी सब कुछ फ्यूचर पर छोड़ देते हैं। कृषा ने युग की बात पर हामी भरी और उसे साइड से हक कर लिया। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे तभी ध्रुव ने उनकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। कृषा के चेहरे पर इतने टाइम बाद मुस्कुराहट देखकर ध्रुव को अच्छा लग रहा था।
अब मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई है, जहां मेरी मॉम के साथ मेरे डैड भी हैं, ध्रुव ने खुद से कहा। फिर उसने चुपके से कृषा और युग की फोटो अपने आईपैड में ले ली थी। फोटो क्लिक करने के बाद ध्रुव ने देखा उसकी शॉपिंग हो गई है। उसने युग और कृषा के बीच में जाना सही नहीं समझा तो वो और सामान देखने लगा। अचानक ही युग की नज़र ध्रुव पर गई तो उसने देखा ट्रॉली भरी हुई थी। युग ध्रुव की तरफ बढ़ते हुए बोला, अगर तुम्हें कुछ और लेना है तो मैं तुम्हें दूसरी ट्रॉली ला देता हूँ। नो डैड, मेरा हो गया है, ध्रुव ने मुस्कुराकर कहा। ध्रुव के बाद कृषा और युग ने थोड़ी शॉपिंग की तो वहीं मलिक और मीरा की शॉपिंग भी कंप्लीट हो गई थी। लगभग चार घंटे बाद वो काउंटर पर पूरा सामान चेकिंग करवा रहे थे। वो आदमी जो उनके पीछे था वो समझ चुका था कि अब वो वहां से जाने वाले हैं। उसने जैसे ही अपने बॉस को इन्फॉर्म किया, अगले ही मिनट में मॉल का मेन गेट बंद हो गया। वो आदमी जो भी था उसने अपने सारे आदमी मॉल में भेज दिए थे और वो अब हमला करने के लिए तैयार थे। अचानक मॉल का दरवाज़ा बंद देखकर युग को समझते देर नहीं लगी कि यहाँ क्या चल रहा होगा। वैसे भी ये सब उसके लिए नया नहीं था। युग ने जल्दबाजी दिखाते हुए जल्दी से ध्रुव को अपनी गोद में लिया और कृषा का हाथ पकड़कर दौड़ने लगा। युग दौड़ते हुए जोर से चिल्लाया, मलिक वी आर नॉट सेफ हियर, टेक अ सेफ पोजिशन। युग की बात मानकर मलिक ने भी मीरा और वीर का हाथ पकड़ा और उन्हें सेफ जगह पर लेकर चला गया। भले ही वो एक सुरक्षित जगह पर पहुंच गए थे लेकिन देखा जाए तो अब मॉल में कोई भी जगह उनके लिए सुरक्षित नहीं थी। ये एक सडन अटैक था जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। युग ने ध्रुव के चेहरे की तरफ देखा तो वो मासूमियत से उसकी तरफ देख रहा था। युग ने उसकी तरफ देखकर सोचा, मैं अकेला होता तो फिर भी मेरे लिए ये सब मुश्किल नहीं था, क्रिश भी साथ होती तो मैं हैंडल कर लेता, लेकिन तुम्हारे सामने ये सब, मैं ये सब नहीं करना चाहता, तुम अभी बहुत छोटे हो। युग ध्रुव की तरफ देखकर सोच रहा था तभी कुछ लोग मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर बने हॉल के बीचों बीच आ गए थे और उन्होंने हवा में फायर करनी शुरू कर दी थी। ध्रुव ने डरकर अपने कानों पर हाथ रख लिया जबकि कृषा के हाथ ध्रुव की आंखों पर थे। युग उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर काले मास्क पहने हुए थे जिसकी वजह से कोई उनको चाहकर भी नहीं पहचान सकता था। युग को अभी पूरी तरह ठीक हुए वक्त ही कितना बीता था कि वो फिर से एक नई मुसीबत में आ चुका था। वैसे यही उसकी जिंदगी थी और वो चाहकर भी उससे भाग नहीं सकता था।